الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آپ کی خدمت میں الکافی کتاب الایمان والکفر کے ضمن میں وارد ہونے والی اخلاق اسلامی سے متعلق احادیث کی شرح ذکر کی جا رہی تھی. گزشتہ دروس میں ہم باب العفت کو مطالعہ کر رہے تھے اور اس کے ضمن میں وہم کا موضوع آپ کے سامنے بیان کیا گیا. محرم الحرام کی آمد ہے. بعض ممالک میں آج ایک محرم الحرام اور بعض میں آج ایک محرم الحرام کی شب ہو گئی. یہ مہینہ اسلام کے مقدس مہینوں میں شمار ہوتا ہے اور زمانے جاہلیت ہی سے اس مہینے کا تقدس لوگوں کے درمیان اور قوموں کے درمیان موجود تھا. تقدس ہر شے کا اس کے مطابق ہوتا ہے، جیسے انسان کا تقدس اس کے آداب اور احترام میں ہے کہ اس کی جان، مال، عزت، آبرو کا احترام کیا جائے. مہینے کا تقدس سے مراد یہ ہے کہ اس مہینے میں ایسے اعمال نہ انجام دیے جائیں کہ جو کسی بھی مہینے کو ایک قباحت اور کراہت کے ساتھ متصف کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال اور اسی طریقے سے مختلف طرح کی انسانیت سوز واقعات کا جنم دینا، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک مہینے کے تقدس کو پامال کر دیتی ہے اور ایک جگہ کو بھی پامال کرتی ہے. لہذا اسلامی تعلیمات جو مشرکین کے درمیان میں بھی پرانی دینی اقدار باقی رہ گئیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا تقدس اور اس کا احترام تھا. یعنی اس مہینے میں انسانی جانوں کا تلف کرنے سے ہاتھ روک دیتے تھے، جنگ و جدال ختم کر دیتے، امن و امان کا قیام کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ عہد و پیمان اور صلح صفائی کے ساتھ اس مہینے میں رہا جائے. یعنی اس مہینے کو انسانیت کے مظاہر میں سے ایک مظہر کے طور پہ آشکار اس مہینے کے اندر اعمال کو عموماً قومیں انجام دیا کرتی تھیں. لیکن دین اسلام نے جہاں اس مہینے کی حرمت کو باقی رکھا اور اسے ان مہینوں میں قرار دیا کہ جن میں قتل و قتال اور جنگ و جدال کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہاں پر ہی اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا گیا اور بدترین طریقے سے پامال کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا گیا، ان پہ ظلم و ستم ڈھائے گئے اور خون بہایا گیا، کہ جو سب چیزیں جو دیگر قوموں میں بھی ممنوع تھیں اور دین اسلام کی شدید ترین مخالفت اور تعلیمات کی پامالی کا باعث بنی. لہذا اس محرم الحرام کے کچھ تقاضے بنتے ہیں، کیونکہ یہ بات آج بھی اتنے طولانی زمانے کے گزرنے کے باوجود یہ بات ذہنوں میں قائم رہ گئی کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، یہ تقدس کا مہینہ ہے. محرم الحرام کے کیونکہ بقیہ کئی نکات ہیں، کتب میں درج ہیں اور سید ابن طوس رحمۃ اللہ علیہ نے اقبال الاعمال میں بہت خوبصورت نکات اس ضمن میں بیان کیے ہیں، ہم ابھی اس سے صرف نظر کرتے ہیں. کچھ تذکر کے طور پہ معلومات کو اپنے درمیان تذکر کے طور پہ اسے برپا کرتے ہیں تاکہ اس مہینے سے استفادہ کر سکیں. محرم الحرام کے جو تقاضے بنتے ہیں وہ ایک ہمارے پاس طولانی فہرست بن جاتی ہے. اگرچہ اس مہینے کے اندر زمانے قدیم میں بھی بہت سارے واقعات کی تاریخ موجود ہے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی عظیم قربانی، لازوال قربانی جو دین اسلام کو حیات دے گئی اور اسی کے ذریعے سے دنیا بھر کے اندر امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عدل و انصاف کا قیام فرمائیں گے، ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उस्वाए हसना और उस्वाए कामिल बन के उभरता है। लिहाजा इसमें एक पहला नुक्ता तो हमारे लिए यही उजागर होता है कि दर हकीकत ये महीना कल्बी एक ताल्लुक का महीना है और ये ताल्लुक जुड़ता है इंसान का, और इसमें तकवीनी असरात और तकवीनी पहलू भी बहुत सारे हैं कि अभी उससे हम सर्फ नज़र करते हैं। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि पब्लिसिटी के बग़ैर और बग़ैर किसी इश्तहार और बग़ैर किसी तबलीगात के इस कदर बड़े पैमाने पे अफराद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम का एहतमाम करते हैं कि अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। ये तकवीनी ताल्लुक के अलावा मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा इस ताल्लुक को कवी करना चाहिए, हमें इस महीने में इस ताल्लुक को जितना कवी कर सकें कवी करना चाहिए, और उसके असबाब मुख्तलिफ बन सकते हैं। मिसाल के तौर पे हर कोई किसी न किसी काम में मशगूल हो जो हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अहया करता है या उसका बायस बनता है। मिसाल के तौर पे मजालिस के इंतज़ामिया में शरीक होना, मजलिस का अहतमाम करना, मजलिस में शिरकत करना, या इसी तरीके से हत्ता सबील वगैरह का अहतमाम करना, मातम का अहतमाम करना, यानी हर वो चीज़ जो गम का बायस बन सके उसको हम इख्तियार करने की कोशिश करें, इस रियायत के साथ कि शरीयत के किसी हुक्म के ख़िलाफ़ वर्जी लाजिम ना आए और ना ही नहजत हुसैनी व तहरीक हुसैनी व हदफ हुसैनी से उसका टकराव हो, इन दो उमूर को मद्देनज़र रखते हुए। बहरहाल ये पहलू हमारे पास तोलानी है, इसको इतना ही इशारतन बयान करने पर इक्तफा करते हैं। एक और पहलू ये है कि यह मीसाक और तजदीद अहद का महीना है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो क़ुरबानी दी वो अमलन मैदान के अंदर एक इम्तहान भी उम्मत का था, और इसी मैदान में हमें नज़र आता है कि बहुत सारे ऐसे अफराद के जिनका साबिका खिदमात और एक अकीदत का ज़माना कहलाता है और साबिका उनका इस हवाले से रोशन है, मुतासिर कुन है, लेकिन जब कसावत और शकावत इंसानी कल्ब के ऊपर तारी हो जाए तो ऐन वक्त के ऊपर वो अपने इमाम को इंसान तनहा कर देता है। लिहाजा इंसान को हर वक्त मीसाक और तजदीद अहद की ज़रूरत पड़ती है, और बहुत महासिन इस दास्तान करबला के अंदर और बेहतरीन कामिल नमूने हमारे लिए मौजूद है। मसलन हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का वाक़या मौजूद है कि शिमर की जानिब से अमाननामा लेके हकूमती अमाननामा भिजवाया गया और एक मुख्तसर से वफद के साथ वो वफद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर की तरफ बढ़ा और एक मामला सियासी मामला अंजाम देने की कोशिश की। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम असलन बात करने के ऊपर ही राज़ी नहीं थे, इसरार के ऊपर बात करने के लिए तशरीफ़ ले गए और कहा कि सिर्फ आप और आपके भाइयों का अमाननामा जारी हुआ है, क्योंकि कबीले के अतबार से शिमर लईन का कबीला और हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की वालिदा उम्मुल बनीन उनका कबीला एक ही था। जनाब उम्मुल बनीन भी बनी किलाब से थीं और शिमर लईन का भी इसी कबीले से ताल्लुक़ था, लेकिन नसबी तौर पे एक शाख नहीं थी, दूर दराज जाके एक शाख बनती थी। जैसे बाज़ लोग ये तवाहुम में ईजाद करते हैं कि वो आपस में बहुत करीबी कोई ताल्लुक था या बहुत नज़दीक कोई ताल्लुक था, ऐसा नहीं था। बहुत बड़ा कबीला था, हज़ारों उस कबीले के अफराद थे और कई सौ ख़ानदान और शाखें निकल चुकी थी, उनमें से एक शाख जो है वो यानी सब शाखें कलाब के ऊपर ख़त्म होती थी, और इससे ताल्लुक़ की बुनियाद पर उसने, क्योंकि कबायली हमियत और कबायली हिमायत वो इंतहाई शिद्दत के साथ अपनी जगह पर उस दौर और उस ज़माने में माशरे के अंदर मौजूद थी। लेकिन जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम ने यह अमाननामा कामिलन शिद्दत और सख्त एक रवैये के साथ उसको रद्द कर दिया, इनकार कर दिया, और उनको सख्त अल्फाज के साथ सरजनिश की और अमाननामा वापस भेज दिया। ये अमाननामे हर ज़िंदगी में इंसान के मौजूद हैं, शक्ल मुख्तलिफ है लेकिन अमाननामे मौजूद हैं। किसी के पास जॉब की सूरत में अमाननामा है, किसी के पास इकामे की सूरत में अमाननामा आता है, किसी के पास पैसे की सूरत में और दीगर बहुत सारे ज़राए हैं। अमाननामे की मारिफत हासिल करें। अगर दुश्मन और इस्तेमार और यजीदियत की तरफ से अमाननामा इंसान को मिले तो वो उस अमाननामे को रद्द कर दे और मौत के साथ गले लगाने के लिए तैयार हो जाए, खून बहाने के लिए अपने तैयार हो जाए, लेकिन दुश्मन के अमाननामे को किसी सूरत कबूल ना करे। ये तजदीद अहद और मीसाक का एक पैगाम है। लिहाजा इधर से मारिफत हासिल करे, बसीरत हासिल करे। लिहाजा मुहर्रमुल हराम दर हकीकत बसीरत और मारिफत का एक महीना है, क्योंकि अगर बसीरत और मारिफत ना हो तो मीसाक भी नहीं होगा। रस्म की तरफ तो सभी भागते हैं, हर कोई चाहता है कि रस्म अंजाम पा जाए। वो उस दौर में भी अंजाम पाती थी, उस दौर में भी कूफा के अंदर कसीदे पढ़ने के लिए और गिरिया हुज़ारी के लिए एक बड़ी तादाद मौजूद थी, इजहार मोहब्बत के लिए एक बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन अमाननामों को रद्द करने के लिए कौन सी तादाद मौजूद थी? वो कुलूब कहाँ थे कि जिन्होंने अमाननामे को यकसर तौर पर नज़रअंदाज कर दिया? लिहाजा इसके ऊपर निगाह करें कि अमाननामे को कबूल नहीं किया। इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शब आशूर सबको मौका दिया कि चले जाएं, उनकी आखरत के हवाले से भी ज़मानत दी कि मैं ज़ामिन हूँ, आखरत में भी अल्लाह सुबहानो ताला कामयाब फरमाएगा और इस दुनिया की भी जहमत और तकलीफ़ से बच जाओ, ये मुझे चाहते हैं, इसलिए मैं इनके सामने हाजिर हूँ, तुम लोग इस रात की तारीकी से इस्तफादा करो और निकल जाओ। लेकिन इस जगह पर आप देखें कि मोहब्बत और इसार और क़ुरबानी और इस्तेकामत की अजीम मिसाल बन गए। ख़ुद इस अमल की अगर तशरीह की जाए तो ख़ुद इसके अंदर इंसानी कमालात का एक वसी हमें नूरानी ज़खीरा नज़र आता है कि जो अंसारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया। लिहाजा इस पर निगाह रखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी सबको इजाज़त दे दी कि चले जाएँ, क्योंकि बिल आखिर वो सऊबतें उठा के मुशक्क़तें उठा के आ गए। उस मैदान करबला में अपनी जान की बाजी के तौर पे उन्होंने अपनी खिदमात पेश कर दी। अब यहाँ से जाएंगे भी तो फिर भी उनके लिए आसानी नहीं है उस माशरे में रहना, लेकिन बहरहाल जी सकते हैं ज़िंदगी। लिहाजा अपने तौर पे जो खिदमात इमामत के लिए अंजाम देनी थी और जो जान दाव पे उन्होंने इमामत के लिए लगानी थी और जो वजीफ़ा कंधों पर आयद होता है नुसरत और इताअत के हवाले से, उसको किसी हद तक उन्होंने अंजाम दे दिया। इसलिए उनके पास फुर्सत मौजूद थी शब आशूर, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जो रहेगा वो शहीद हो जाएगा। लिहाजा ये भी जहन में ख्याल आ सकता था कि अगर हम पहुंच जाएं अपने अपने इलाकों में, तबलीग दीन करें, पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सुनाएं और लोगों को फिर और मज़ीद आमादा करें, यह भी सोच आ सकती थी। लिहाजा बहुत सारे बहाने बन सकते थे, लेकिन देखें उन्होंने बहानों को रद्द किया, ख़तरात को उन्होंने कबूल किया। ये हुसैनियत का पैगाम है। इन मसाइब की दुनिया में रस्म हमको इन चीज़ों से दूर ना ले जाए, बल्कि कुलूब के अंदर रासिख तौर पे ये बर्पा कर दे कि खिदमत ता आखिर कतरा खून, ये खिदमत का तसव्वुर करबला ने पेश किया। ये तसव्वुर पेश नहीं किया कि चार झाड़ू हमने लगा लिए, बस हमने भी अपना हिस्सा डाल लिया, अब निकलते चले। ये बातिल तसव्वुर है। अगर ये तसव्वुर कायम हो जाए तो वही हाल हर जगह हो जाओ करबला का हुआ। क्यों करबला का मसला इस तरीके से खड़ा हुआ? क्योंकि जो दीगर इलाकों में मौजूद उम्मत के अफराद थे, मदीना सहाबे कराम से भरा हुआ था, मक्का हाजियों से भरा हुआ था, ताबईन व तबे ताबईन और सहाबे कराम, इन तीन के अलावा तो और कोई तबका मौजूद नहीं था उस दौर में। इसी तरीके से सियासी माना में तशय्यों से जो मुंसलिक अफराद थे, बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, बहरीन में थे, यमन में थे। इसी तरीके से कूफा तो गढ़ शुमार होता था, मिस्र में बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, हज़ारों का ये लश्कर बनता है। बसरा के अंदर कई कबाइल, जंगजू कबाइल मौजूद थे, लेकिन सारे के सारे खामोश बैठे रह गए। अपने अपने तौर पे सब ने हिस्सा किसी न किसी हद तक दिया, किसी ने सफ़ीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल किया, किसी ने घर ठहराया, किसी ने माल भेजा, किसी ने खूब इजहार मोहब्बत और अकीदत किया। लेकिन ये गौहर हमें नज़र नहीं आता कि जो शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अंसार में मौजूद था, और वह गौहर क्या है कि जो भी नुसरत अंजाम देनी है, जो भी इताअत अंजाम देनी है, उसका तसव्वुर एक दो मरतबा नहीं है, ये तसव्वुर बातिल तसव्वुर है। तो आखिर कतरे खून उसका तसव्वुर वजूद में आए तो तब नुसरत जन्म लेती है। यानी थकना नहीं है, नाउम्मीद नहीं होना, घबराना नहीं है, जगह छोड़ के नहीं जानी, खतरात को मोल लेना है। बिलाखिर खतरात हर जगह मौजूद हैं, जो करबला नहीं आए उनके घर भी महफूज नहीं रहे, और जो अपने तौर पे मुख्तलिफ इलाकों में छुपते फिरते रहे बिलाखिर वो भी मौत का शिकार हो गए। सिर्फ चंद साल का फ़र्क है, चंद घड़ियों का फ़र्क है, और वो घड़ियाँ इसी तेज़ी से गुजर जाती हैं जैसे शब रोज़ आज हमारे गुजर रहे हैं कि हमारे गिरफ्त से बाहर है। सुबह उठते हैं, चंद काम काज में मसरूफ़ होते हैं, रात की शब फिर लौट आती है, और फिर सुबह का उजाला सवेरा निकलता है, और इंसान उसी अपनी रूटीन में दोबारा मशगूल होता है, और गाफिलाना ज़िंदगी बिलाखिर मौत के आगोश में इंसान को पहुंचा देती है। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि ये मकाम बसीरत है माह मुहर्रम, मकाम तजदीद अहद है। अहद करें तो अपने आखिर कतरे खून के बहाने का अहद करें कि हम आपकी राह में इसी तरह डटे रहेंगे, इसी तरह मसरूफ़ अमल रहेंगे, यहाँ तक कि मौत आके फ़ैसला कर दे और हमें इस कामयाब राह के ऊपर अपने आगे की मनाजिल पे पहुँचा दे। इसी तरीके से ये तजदीद अहद करें मसाइब को सुन के शब आशूर के, कि हम आखिरी कतरे खून तक अपनी इस नहजत को, इस तहरीक को, इस सदाए हक को जारी रखेंगे। ये तजदीद अहद करें कि नामे अमान को कबूल नहीं करेंगे, जितने नामे अमान भेजे जाएं हम अपने कदमों में लग्जिश नहीं लेकर आएंगे। लिहाजा ख़ुद ये बहुत बड़ा एक टॉपिक बन जाता है कि उन्होंने जब नुसरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अंजाम दी, और आखिरी उखड़ती हुई जब सांसें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पहुँचना उनके पास सामने आता और वो अल्फाज जो नकल किए हैं, तो ये अंसार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अल्फाज होते, हल वफीत हो, या इमाम की आप गवाही देते हैं कि मैंने वफा की, मैंने इस अहद को निभा दिया है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गिरिया फरमाते हुए फरमाते कि हाँ, मैं गवाही देता हूँ कि तुमने इसे निभा दिया है। लिहाजा ये हुस्न इंसान में पैदा करता है कि वफा पे निगाह रखे। लिहाजा अगरचे माह मुहर्रमुल हराम गम का महीना है, मसाइब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हर दिल और कल्ब जो ईमान की रौनक से अफरोज है वो अपने वजूद के अंदर हुज़्न को पाता है, लेकिन ये गम इंसान को बसीरत से हमकिनार करे। अगर ये गम सिर्फ़ एक रस्म की हद तक रह जाए और उससे आगे ना बढ़े, तो ये वही मुआशरा है कि जो कूफा तक रह गया, करबला तक सफ़र नहीं कर सका। आज हमारे लिए लाजिम है कि अपनी ज़िंदगियों में कूफी ज़िंदगी से करबलाई ज़िंदगी का हम सफ़र करें। यानी वो जो कूफी उस दौर के, आज का कूफा यकीनन, जब हम कूफा कहते हैं तो उससे मुराद शहर कूफा नहीं है, क्योंकि इसी शहर कूफा से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अक्सर बेशतर अंसार थे। यही शहर कूफा था जैसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दारुल खिलाफा के तौर पर इंतखाब किया। यही शहर कूफा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इसे दारुल खिलाफा जहानी दारुल खिलाफा बनाएंगे अपनी आलमी हुकूमत का। शहर कूफा मकसूद नहीं है यहाँ पर, वो माशरा और उस माशरे में जो मौजूद खसूसियात थीं, वो खसूसियात अमूमन रूटीन लाइफ में ज़िंदगी बसर करते करते इंसान उसका आदी हो जाता है और इख्तियार कर लेता है। यहाँ पे असल मसला है, अपनी रूटीन लाइफ में सफ़र करें कूफा से करबला का, क्योंकि करबला के एक महासिन है और एक कूफा की ज़िंदगी के महासिन थे। कूफा वो होता है माशरा कि जहाँ पे मुस्लिम आए तो वो तन्हा हो जाते हैं, इसे कहते हैं कूफा। जहाँ पे मुस्लिम बिन अकील आए तो तन्हा हो जाते हैं, इस वक्त तशय्यो का आज भी बहुत बड़ा मसला है। हकीकत में आज मुस्लिम बिन अकील अगर बनकर किसी जगह के ऊपर कोई सदाए हक बुलंद करे और यजीद वक्त को ललकारे तो कितने लोग हैं जो मुस्लिम बिन अकील को पनाह देंगे। ये बहुत सोचने की चीज़ है कि वो कौन से अफराद, कितने अफराद हैं जो अपने आज के दौर के मुस्लिम को वो पनाह दें। क्योंकि मुस्लिम को पनाह देने का मतलब क्या है? अपने पूरे ख़ानदान को दांव पे लगाना, अपनी जान दांव पे लगाना, अपने आराम माल और इन तमाम असबाब दुनियावी को क़ुरबान कर देना, ये मतलब है मुस्लिम बिन अकील को पनाह देना। अब वो भरा हुआ है कूफा, ज़ाहरी तौर पे शिया की हिमायत और शिया के इनवान से, अलबत्ता ये शिया इस नाशरी के इनवान से नहीं है, उस दौर में जो इमाम अली अलैहिस्सलाम को हाकिम कबूल करता था, सुन्नी हो या शिया हो, वो शिया ही कहलाता था। लिहाजा एक बहुत बड़ी तादाद कूफा में रहने वाली वो सुन्नी थी आज की तकसीम के मुताबिक, लेकिन शिया कहलाती थी और शिया इस नाशरी भी थे। खुलासे कलाम, कूफा के अंदर असल जो नुक्ता है वो ये नहीं है कि कलमा शिया को इस हवाले से कोई सुन्नी तफरकाबाज पकड़ के और बदनाम करने लग जाए और फिर आगे से शिया जवाब दे, आखिर मदीना और मक्का में भी तो सहाबा थे, वो फिर क्यों नहीं आए और उन्होंने क्यों नहीं हरकत की और तहर्रुक ईजाद किया और उनके बेटे क्यों कातलीन में आ गए। इन मबाहिस से किनारा कश हो के सोचें कि जब भी यजीदियत के ख़िलाफ़ क़याम होता है, यजीदियत के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाती है, तो क्यों मुस्लिम तन्हा हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये माह मुहर्रम में उठना चाहिए सवाल। ये जब मसाइब मुस्लिम बिन अकील पढ़े जाएं और इंसान उसके ऊपर गमगीन और हजीन और गरियाह जारी करे तो वो अपने जहन में ये सोचे कि क्यों मुस्लिम तन्हा हो गए, तजदीद आहद करे कि मुस्लिम मैं आपके हमरा हूँ, मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ आपके इस हदफ और इस मकसद के लिए कदम शाना बशाना बढ़ाऊँगा। लिहाजा यहाँ पर तजदीद आहद करे, बसीरत हासिल करें मुस्लिम क्यों तन्हा हुए। बस जहाँ पर कूफी खसूसियात से आरास्ता माशरा होगा, ज़ाहरी तौर पर कसीर तादाद अक्सरियत कलमे शिया के इनवान से पहचाने जाते हैं, अक्सरियत जो हैं वो कारी और नमाजी हैं कि जिन्होंने मस्जिद कूफा को आबाद रखा हुआ है, बड़े बड़े कबाइल हैं और जंगजू होने के हवाले से साबिका उनकी बड़ी बड़ी खिदमात भी मौजूद हैं, लेकिन मुस्लिम उस माशरे में तन्हा है। आज के दौर को अगर आप लेके चलें तो वाज़े है कि हमारे पास कौन से मुमालिक और कौन से नज़रियात वो इस इलाहादी यजीदी और इस्तेमारी हैं और उन उस इस्तेमारी जो एक जहानी तौर पे इस्तेमारियत को बरपा किया हुआ है, जो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है और उसके मुकाबले में हुकूमत इलाही का तसव्वुर पेश करता है, वो मिसले मुस्लिम माशरे में तन्हा नज़र आता है। उसके लिए वही सख्तियाँ दोबारा लौट के आ जाती हैं कि जो आप माजी में पढ़ा करते हैं। लिहाजा यहाँ पे हमें यह बात, यानी अपने ही उसकी तरफ नहीं आएंगे और तरह तरह के वीडियोज़ बनाएंगे, क्लिप्स बनाएंगे, शख्सियत को गिराएंगे, रस्म की तरफ लेके जाना चाहेंगे, लोगों को उसकी शख्सियत से दूर करना चाहेंगे, जैसा कि उस दौर में जनाब मुस्लिम बिन अकील से यही सलूक किया गया। यहाँ तक कि कबाइल अपनी तलवारों समेत, अपने असलहे समेत खामोश होकर सर झुका के अपने घरों में बैठे रह गए। लिहाजा ये मुहर्रमुल हराम इस याद को ताज़ा करता है। लिहाजा करबलाई दौर, करबलाई मुआशरा, करबलाई खसूसियात का हामिल इंसान सिर्फ इनवान करबलाई ना हो बल्कि वो खसूसियात की झलक करबलाई दिखाई देनी चाहिए। करबलाई झलक क्या है? अमान नामों को कबूल ना करें। करबलाई झलक क्या है? कि मीसाक और अहद को वफा करें। वफा कहते हैं एक शय को पूरा कर देना। इंशाल्लाह ये हमारे दरस तफसीर जो सूरह बरात में चल रही है उसमें ये बहस आ रही है कि अहद और वादा में क्या फ़र्क है। कि अहद जो है वो मुकम्मल तौर पर निभाया जाता, वफा किया जाता है, जबकि वादा जो है वो इंजाज का लफ्ज़ आया है, उसको अंजाम दिया जाता है। अगर उर्दू में फ़र्क کرنا چاہیں تو ہم اس طرح سے ممکن ہے کہہ سکیں کہ وعدہ کو انجام دیا جاتا ہے اور عہد کو نبھایا جاتا ہے. یعنی عہد وہ ہوتا ہے جو مکمل طور پہ ایک چیز کو انجام دے دیں, ایک ذرہ بھی اس کو نہ چھوڑیں, اسے کہتے ہیں. اسی لیے موت کو وفات کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ اس کی زندگی یہاں سے سلب کر لی گئی. اگر کچھ زندگی باقی رہے اور کچھ لے لی تو یہ وفا نہیں ہے, اس لیے اسے وفات بھی نہیں کہیں گے. کلمہ وفات وہ عمومی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے, لہذا عہد کو وفا کرنے کی طرف آنا چاہیے. قرآن کریم نے بھی جہاں پہ عہد کو تذکرہ کیا ہے وہاں پہ کلمہ وفا کا تذکرہ ہے, کہ جیسا کہ یہ والموفون بعہدہم اذا عہدوا, کہ اسی سے ہم نے اقتباس لیتے ہوئے اپنے ادارے کا نام البر رکھا ہے, کہ ابرار جنم ہی تب لیتا ہے کہ جب عہد کر لے تو پھر وفا کرتے ہیں. والموفون بعہدہم, اپنے عہدوں کو انہوں نے وفا کیا. اذا عاہدوا, جب انہوں نے عہد کر لیا. اور یہی تعبیر قرآن میں ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوئی ہے, من المؤمنین رجال عاہد اللہ صدقوا ما عاہد اللہ علیہ. یہ جو کلمہ صدقوا ہے اور پھر آگے ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ, قَضَى نَحْبَهُ یعنی انہیں موت آ گئی, ان کی جانیں اس بدن سے جدا ہو کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملیں. یہ مورد کہ تب تک وہ صداقت کا نمونہ بنے رہے, تب تک وہ اس عہد کو نبھاتے رہے یہاں تک کہ موت نے آ کے فیصلہ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ, اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو انتظار میں ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تبدیلہ, انہوں نے نہیں تبدیل کیا, عہد کو تبدیل نہیں کیا, اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, ڈٹے رہے عہد کے اوپر. کربلا در حقیقت اس تشیع کو متعارف کراتی ہے, اس حسینی کو متعارف کراتی ہے. لہذا اس میں کوشش کی گئی کہ تحریف کریں, چہرہ مسخ کیا جائے, پروپاگنڈے کیے جائیں, دبایا جائے. آج بھی یہ سلسلہ دشمنوں کی طرف سے یا نادانوں کی طرف سے جاری ہے, لیکن خود کربلا اور اس کا غم وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ بآواز بلند اس چیز کو زبان زبان حال سے بیان کر رہا ہے کہ کربلا کیا ہے, حسینیت کیا ہے. حسینیت در حقیقت راہ الہی میں استقامت کا نام ہے. راہ الہی میں ہر قسم کے ایسے امان نامے کو رد کرنا ہے کہ جو اسے حسینیت سے باہر لے جائے. در حقیقت کربلا وہ صبر اور بڑی سے بڑی قربانی اللہ کی خاطر دیتے ہوئے بھی اپنے قدموں میں لغزش نہ آنے کا نام ہے. اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کربلا سے ہم ان 10 دنوں میں بالخصوص, اور جو ہمارے ایک الحمدللہ معاشرے کے اندر رسمی طور پہ ایام کے انعقاد کا سفر جو ہے وہ ماہ سفر کے اختتام تک وہ وسعت پا چکا ہے, ان مہینوں میں تزکیہ کریں اپنے نفس کا. لہٰذا نفس کوفی کو نفس کربلائی کے دائرے میں لائیں, اس کے بعد معاشرے کو لانے کی کوشش کریں. اگرچہ معاشرہ سبقت رکھتا ہے فرد کی ذاتی شخصی زندگی کے اعتبار سے, لیکن انسان جب آغاز کرتا ہے تو اس آغاز میں اپنے آپ کو وہ حد عقل اختیار اور استطاعت رکھتا ہے کہ تبدیل کر سکے. لہذا کربلا کے تقاضے ہیں, محرم الحرام کے تقاضے ہیں. محرم الحرام کے تقاضے وہی تقاضے ہیں جو کربلا ہمیں پیش کر کے دے رہا ہے. کربلا جو پیش کر رہا ہے اس کے چند نمونے آپ کے سامنے ذکر کیے. جب مسلم بن عقیل کی شخصیت سامنے ابھرے تو یہاں پہ تجدید عہد اپنے امام وقت کے ساتھ کرے کہ یا امام, آپ کے مسلم کو تنہا نہیں چھوڑیں گے, آپ کے مسلم کے مددگار اور ناصر رہیں گے. اور ادھر سے یہ بصیرت بھی حاصل کریں کہ اگر ایک ایسا معاشرہ ہو کہ کہنے کو وہاں پہ اکثریت شیعہ کی ہو, کہنے کو وہ جنگجو ہوں, اپنے ماضی کے اعتبار سے بڑی انہوں نے طولانی اور سخت قسم کے کٹھن اور دشوار جنگیں انہوں نے لڑی ہیں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس اکثریتی شیعہ علاقے میں جو کہ محبت اور قربانی اور نصرت کی تاریخ بھی رکھتے ہیں وہاں پہ مسلم تنہا ہو جاتے ہیں. یہ کیوں تنہا ہو گئے, اسے بہت ہمیں دقت کرنی چاہیے, بہت دقت کرنی چاہیے, کیونکہ آج بھی یہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے. اپنوں کے درمیان इसी राह को इख्तियार करने वाले अफराद वो हैं तन्हाई के आलम में। इसी तरीके से आगे सफ़र करें, करबला में पहुँचें, शब आशूर, बहुत इससे हम एक बसीरत लेने की कोशिश करें और तौफीक अल्लाह ताला से तलब करें कि इंसान को अमान कितने कितने ज़रियों से मिलती है। कभी दुश्मन अमान लेके आ जाता है, कभी इमाम मासूम मेहरबान हो जाता है, कभी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत इख्तियार की सूरत में आ जाती है कि तुमने अपनी वफा का सबूत दे दिया, अब जाओ तुम्हारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे इंसान की वफा का जो नज़रिया है, अहद को वफा करने का नज़रिया, इसके ऊपर एतिकाद, इसके ऊपर अपने नफ्स की तरबियत, ये वहाँ पे इंसान को रोक देगी। वो कहेगी नहीं, मैं अहद को वफा करके जाऊँगा। वफा कब होती है? ये जो अहद व पैमान इमामत से बांधा है, नुसरत की जो हमने बैअत की है नुसरत के मौजू के ऊपर कि या इमाम आपकी नुसरत करेंगे, हम आपकी इताअत करेंगे, आपके हदफ को अपना हदफ समझेंगे, आपकी खातिर उस दुनिया में जिएंगे, ये कब अहद व पैमान वफा होगा? ये वफा उस वक्त होगा जब आखिरी कतरे खून हमारे बदन से निकल जाएगा और ज़िंदगी की रमक इस दुनिया में ख़त्म हो जाएगी। वाहिल्ला इससे पहले तो ये मरहला नहीं आता कि इंसान इमाम अलैहिस्सलाम और उनके दीन की नुसरत को तर्क कर दे। नुसरत फिर हर कोई अपने दायरे इख्तियार में करता है, ये बहुत एक अहमियत की चीज़ है। हर इंसान ये समझता है कि सिर्फ तलवार चलाना वही नुसरत है, ऐसा कतन नहीं है। जनाब जॉन वो ग़ुलामी के अंदाज में करबला तक पहुँच गए, उनकी जो नुसरत थी वो खिदमत के तौर पर थी। इसी तरीके से बाज़ ऐसे अफराद थे कि जो बच्चों को पालने के अतबार से ख़वातीन ने नुसरत की, बाज़ ऐसी ख़वातीन थीं कि जिन्होंने हौसला देने के अतबार से, सब्र और मुसीबत को अपने सीने पे झील लेने के अतबार से नुसरत की। लिहाजा नुसरत का एक शोबा नहीं है, माल एक शोबा है, जान एक शोबा है, इसी तरीके से आवाज़ को बुलंद करना, इसी तरीके से लोगों को पुर उम्मीद करना, लोगों को मायल करना, दुश्मनों के प्रोपेगेंडा और दुश्मनों के हरबों को नाकाम करने की कोशिश में मसरूफ़ रहना, ये सारे के सारे नुसरत के मुख्तलिफ जाविये हैं। लेकिन इसके ऊपर थक ना जाए। अमूमन यही होता है कि इस टाइम एक बड़ी आफत जो हमें दिखाई दे रही है कि वह दीनी इदारे वो बंजर होते चले जा रहे हैं, अगवा अलग हो रहे हैं जो बने थे, और वो फ़र्द असासी चला गया कि जो उसका रूह रवान शुमार होता था, उसके बाद वो बंजर हैं, वीरान पड़े हुए हैं, किसी भी काम और किसी भी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नहीं होते। लिहाजा ये तसव्वुर नुसरत का बातिल तसव्वुर है कि चंद दफ़ा एक मसला और एक अमल को अंजाम दे दिया, उसके बाद थक हार के हम एक तरफ हो गए और फिर अपनी उसी रूटीन कूफी लाइफ में ज़िंदगी बसर कर दी। लिहाजा इस मुहर्रमुल हराम में हम आगाज़ ही में अल्लाह सुबहान व तआला से ये दुआ करें और अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिमास करें कि खुदावंद मुताल हमें अपने नफूस को अहले करबला के नफूस से करीब होने की तौफीक इनायत फरमाए। वो सिफात और वो औसाफ़ के जो अहले करबला के थे, उसका कुछ हिस्सा अपने वजूद में लेने की अल्लाह सुबहान व तआला हमें तौफीक इनायत फरमाए। और ये तब भी होता है कि जब हम इसे तलब करें। जो तलब नहीं करता, जो तालिब नहीं है, उसे अता भी नहीं है। लिहाजा तालिब अव्वल बने, जो तालिब नहीं है उसे अता भी नहीं हो सकती। इसलिए इन्हीं मरहलों से गुजरेंगे कि मजालिस का इनेकाद है, मसाइब को सुन रहे हैं, तालीमात हुसैनी जो पेश की जा रही हैं उसी को सुन रहे हैं, लेकिन तालिब बने इन चीज़ों के, बसीरत के तालिब बने, वफा के तालिब बने, शुजात और जुर्रत के तालिब बने, अज़्म और इस्तेकामत के तालिब बने। ये इंसान के अंदर हुस्न को पैदा करती है, अगरचे ज़िंदगी तलख कर देती है, अगरचे ज़िंदगी में उसके ज़ाहरी तौर पे रौनक नज़र नहीं आती, लेकिन उसकी रूह बड़ी खुशगवार हो जाती है। वह अपनी रूह के एतबार से नशोनुमा पा लेता है कि उस आतिश और उस हरारत को जहले करबला के इस बुलंद तरीन एक ज़खीरे से आश्कार हो रही हैं किरणें, उनसे अपने आप को लबरेज़ कर सके। तो इंशाअल्लाह ताला मुहर्रमुल हराम के इन तकाज़ों को हम आके लेके चलेंगे। इसमें आखिरी नुक्ता कि जिसको अर्ज़ किया जाए, اور وہ ہے کہ اس کے معنوی اثرات کو اپنے وجود کے اوپر ضرور ظاہر کریں۔ خود یہ جو موضوعات آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں، اس کی کئی مثالیں اور کئی اس کے نمونے اور مصادیق آج کے دور میں ابھرتے ہیں کہ اس کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں کبھی نہ کبھی خدا کی توفیق ہوئی تو بیان کیا جائے گا، لیکن خود اس مطلب پہ بہت ہمیں آج کے دور میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ امان ناموں کو پہچانیں، یہ جو شمر کی طرف سے امان نامے آتے ہیں اسے ضرور پہچانیں۔ اس وفا کے نظریے اور عقیدے کو اپنے وجود کے اندر اس قدر محکم طور پر ہم پیوست کریں کہ اس کے بغیر زندگی کا جینا ہمیں محال اور ناممکن نظر آئے۔ عزم اور استقامت کو اختیار کرنے کے لیے اپنے نفوس کو آمادہ کر لیں، لہذا یہ مراحل ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم نقطہ اور اس کے اوپر یہ گفتگو بھی ختم کی جاتی ہے، وہ ہے معنوی اثرات۔ معنوی اثرات محرم الحرام کے اندر وہ اسی طریقے سے ہیں کہ جس طریقے سے رمضان المبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہیں، اسی طریقے سے محرم الحرام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی روح کی نشوونما کے خزانے کھولے ہیں۔ لہذا محرم الحرام میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے قلبی تعلق اور ان کے ساتھ میثاق اور عہد کی وفا کا جو تعلق ہے، اس کو قائم کر کے انسان اپنے روح کو تیزی سے نشوونما دے سکتا ہے۔ اس بارے میں باقاعدہ ہمارے پاس احادیث مبارکہ ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں، خصوصاً جو آئی میں اہل بیت علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں۔ ایک تو ذخیرہ ہمارے پاس خود اہل سنت کتب سے آ جاتا ہے، اور اہل سنت کتب میں بھی اس مہینے کے حوالے سے بہت سارے امور مذکور ہیں، لیکن آئمہ اطہار علیہ السلام کے پاکیزہ سرچشمے سے جو اصل دین ہمارے لیے آشکار ہوا ہے، اس میں ایک بہت عظیم معنوی ہمارے اندر رونق اور نشوونما کا موقع فراہم نظر آتا ہے۔ مثلاً ہمارے پاس ایک تفصیلی موضوع جو ماہ محرم الحرام میں بالخصوص ہمارے لیے آشکار ہوتا ہے، اور پورا سال بھی انسان اسے اپنے وجود پر طاری کر سکتا ہے، لیکن بہت زحمت و مشقت چاہیے، لیکن محرم الحرام میں انسان کے لیے وہ مقدماتی طور پہ ان ایام مصائب کی وجہ سے موجود ہے، اور وہ غم امام حسین علیہ السلام میں کریہ کے ذریعے سے اپنی روح کو گناہوں سے پاک کرنا ہے۔ لہذا روایات میں وارد ہوا ہے کہ اگر ایک شخص کے آنکھ میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ جنم لے لے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کو لکھ دیتا ہے۔ یہ چیزیں کوئی اس طور پہ نہیں ہیں کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آٹومیٹکلی بعض چیزیں انجام پانے لگ جائے، بلکہ یہ ایک تکوینی حقیقت ہے۔ خلقت اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا اور اس نظام خلقت کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے غم کی تپش کو اپنی روح کے اندر احساس کرے گا، اور اس کی وجہ سے انسان کا دل ایک نرمی کا احساس کرتے ہوئے آنسوؤں کو جنم دے گا، وہ اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنے سے گناہوں کو اور معصیتوں کو اور جرائم کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس کا سفر اہل کربلا کی طرح تیزی سے آگے بڑھ سکے۔ یعنی جو بالفاظ دیگر جو سفر جناب حر اور جناب زہیر نے کیا تھا، اس کی فرصت تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی کسی کا یزیدی اور کسی کا عثمانی گزرا ہو، ہو سکتا ہے کہ زندگی کی تمام کے تمام جوانی کے جو حالات اور جوانی کے جو توانائی تھی وہ ایک طاغوتی اور استعماری اور گناہوں کی راہ کے اوپر خرچ ہو گئی ہو، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنا امام، اپنا خلیفہ، اپنا رہبر، اپنا حاکم وہ تسلیم کر لیا اور ان کی اطاعت اور ان کی محبت کا جذبہ لے کے میدان میں وارد ہو گیا، اور ان کے غموں کو اس قدر بڑے پیمانے پہ اپنا غم قرار دیا کہ وہ اپنے غم ہی بھول گیا، تو یہاں سے وہ برگشت اور واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف فرار کرو، یہ وہ فرار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ या अल्लाह सुबहान तआला की तरफ रुजू का मरहला शुरू होता है। लिहाजा एक आंसू आके इंसान को जराइम से निजात दे देता है, एक आंसू आके। और इसके नमूने इनकलाब इस्लामी, चूँकि इनकलाब इस्लामी वो करीब तरीन हकीकत करबला के हमारे पास एक अजीम नमूना है, अजीम नमूना। यानी अगर करबला की तासीर को बशरियत के इस ज़माने में आशकार तौर पर उम्मतों के दरमियान उजागर हम देखना चाहें तो उसमें सबसे अजीम तरीन मिसाल वो इनकलाब इस्लामी की राह में कुर्बानियाँ देने वाले जवान और बूढ़े और ख़वातीन और बच्चे हैं, और जिन्होंने दिफाए मुक़दस में दुनिया भर के तवाहीद की तरफ से इस निज़ाम के ऊपर जब हमला हुआ तो ये सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए, बुनियान मरसूस बन गए। कि जैसा कि सूरह सफ़ में वारिद हुआ है कि इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुन मरसूस। अल्लाह उन अफराद से मोहब्बत करता है जो उसकी राह में क़िताल और जिहाद करते हैं, और इस तरह से डटे हुए वो लश्कर बन जाते हैं कि जैसा कि सीसा पिलाई हुई दीवार होती है कि हर तरह का दुश्मन अपना हरबा इस्तेमाल कर लेता है लेकिन उस दीवार को गिरा नहीं पाता। जैसा कि नमूना दिखाई देता है, इसी तरह एक वाक़या है कि उस फ़र्द का नाम फ़िलहाल जहन में नहीं है क्योंकि शाह ने इनकलाब इस्लामी की इस सदा को दबाने के लिए और हुकूमत इलाही के क़याम करने वालों को दबाने के लिए बदमाशों का बड़ा सहारा लिया था। ये जो गुंडे बदमाश हैं ये तमाम हुकूमतों में आज भी चलती है सियासत, हत्ता कि बहुत सारे मजहबी ग्रोह ये सियासत कर रहे होते हैं। खसूसन पाकिस्तान तो इसकी एक अमाजगा है कि ज़ाहिरन मौलाना साहब होते हैं लेकिन उन्होंने फसाद के लिए और कत्ल वारत के लिए उसी तरह के बदमाश पाले होते हैं जैसे दीगर सियासी पार्टियों ने पाले होते हैं। तो शाह ने भी इसी तरह से इन गुंडों और बदमाशों को करीब किया, उन्हें खूब सपोर्ट की जाती, न पुलिस उन्हें छेड़ती थी न फौज उन्हें छेड़ती थी, और अपने जिनको दबाना होता था उनके ख़िलाफ़ वो लोग भरपूर तरीके से उनकी खिदमात लेते थे। जैसे पाकिस्तान में शिया सुन्नी फ़िरकावारियत एक मरतबा साजिशी तौर पर फैलाई जाती है जैसे MI6 की तरफ से है, और एक दफ़ा रियासती इदारों की तरफ से बरपा की जाती है कि शिया को मारा गया और नाम ले दिया गया जी ये सुन्नियों ने मारा है, सुन्नियों के मौलाना साहब को मारा गया, नाम ले दिया गया कि ये तो शियों ने मारा है, और झूठी खबरें झूठी दस्तावेज़ या मुमकिन है कि उन्होंने इस तरह से रखे हों शिया सुन्नी, लेकिन उनके इस तरीके से उन्होंने साजिशी जाल उनके इर्द गिर्द बुना है कि वो यही समझते हैं कि शायद ये हमारा दुश्मन और वो समझते हैं ये हमारा दुश्मन, और इसके नतीजे में वो अफराद को फौरन ये छूट भी जाते हैं, ज़ाहरी तौर पे उनकी मदद भी की जाती है और दोनों फरीक की मदद की जाती है और एक दूसरे को कत्ल कराया जाता है। तो ये साजिश हर दौर में चलती रही हैं, आज भी ये चल रही है। तो शाह ने भी यही तरीक़ेकार इख्तियार किया और एक बड़ा बदमाश था, वो जहाँ पे आता लोग उसको और उसके बंदे गुंडों को देख के फ़रार करते क्योंकि वो इंतहाई बेरहमी के साथ कत्ल व ग़ारत में चाहते थे। तो बिलाखिर शाह के साथ मुलाकात की तो शाह ने कहा कि इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर तबर्रा करो, तो खामोश रहा। फिर उसने कहा कि क्योंकि बड़ा इसे घमंड और तकब्बुर था तो फिर इसे कहा गया कि तकब्बुर करो तबर्रा करो, तो उसने कहा कि ये औलाद ज़हरा है मैं कैसे तबर्रा करूँ, ये तो सैयद है, सैयद का मैं एहतराम करता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब सैयदा सलामुल अलैहा की वजह से उसने कहा मैं एहतराम करता हूँ, जो कहोगे वो करने के लिए आमादा हूँ लेकिन ये काम क्यों मुझसे लेना चाहते हो। बहरहाल गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद किया गया, इसके ऊपर वो डट गया यहाँ तक कि उसे तशद्दुद कर करके शहीद कर दिया गया, लेकिन इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह उनके ख़िलाफ़ ज़ुबान दराज़ी के लिए आमादा नहीं हुआ। लिहाजा ने मुलाहिज़ा किया कि इस तरह से ये झलक इंसान के वजूद में नुमाया होती है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अगर कल्बी ताल्लुक़ इंसान का जुड़ जाए वो हर मुशक्क़त हर मुश्किल हर ज़ख़म हर दुख और दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपने अंदर हौसला पा लेता है, और ये हौसला पाना ये कोई जादुई किस्म का नहीं है, क्योंकि कल्ब करीब हो तो वो खसूसियात को अपने दायरे और ज़र्फियत के मुताबिक इंसानी नफ्स लेना शुरू कर देता है। हुसैनियत के जितना करीब है उतना कमालात के मर्तबे के ऊपर फायज होता चला जाता है, लिहाजा तकवीनी तौर पे वो अपने अंदर एक तवानाई और ताकत को कसब करता है इंसान, या इस नौरानी सरचश्मे की तरफ से अता की जाती है, और एक नौरानियत का रब्त और ताल्लुक इंसानी वजूद के अंदर कायम हो जाता है। लिहाजा इस तरफ तवज्जो रखे कि क्रिया रवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम है कि अगर नहीं तुम्हें रोना आ रहा तो रोने वालों की शक्ल बनाओ अल्लाह की खातिर, अल्लाह को दिखाने के लिए, ना लोगों को दिखाने के लिए। लोगों को दिखाने का तो कोई नतीजा और फ़ायदा नहीं है, रियाकारी के लिए नहीं है ये, अल्लाह की खातिर बारह लाहा कि मैं तेरी खातिर कि तेरे वली के गम और मसाइब के ऊपर, चूँकि तेरा ही हुक्म मुझे आइमे अथार अलैहिस्सलाम की जानिब से ये मिला है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए गिरिया करेगा या गिरिया की शक्ल बनाएगा उसके लिए ये कमालात या ये अजर व सवाब और मकाम तेरी ज़ात ने रखा है। लिहाजा मानवी असरात को कबूल करने का आगाज़ वो गिरिया आहोजारी से शुरू होता है। इसको इख्तियार करें इंसान तन्हाइयों में सामने, लेकिन अल्लाह ताला के पेश नज़र खुदावंद मुतआल की ज़ात के सामने अपने आप को इस सूरत में लाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कह कहे ज़्यादा लगाए जाते हैं, गुनाहों से नफ्स आलूदा हो जाता है तो कसावत आ जाती है। ये कसावत आंसुओं को रोक देती है, क्योंकि आंसू अगर रवा हो जाएं तो एक नरमी का अजीब एहसास इंसान अपने नफ्स में पाता है। नरमी का एहसास जब पाता है तो तालीमात भी वो इसी तरीके से गहरे तौर पे इस सरजमीन नफ्स के अंदर पैवस्त होते हैं कि जैसे एक हमवार ज़मीन के ऊपर जब बारिश होती है तो पानी नीचे की सतह तक सराइयत कर जाता है। ऐसा ये सूरत हमारे सामने गम की आनी चाहिए, लेकिन फ़कत इसके ऊपर इक्तफा ना हो, आगे बढ़े। यहाँ पे नरम अपने सरजमीन कल्ब को नरम कर दिया। कल्ब की ज़मीन बहुत सख्त है। अगर क़ुरान से पूछा जाए कि आया कल्ब इंसानी की ज़मीन सख्त है या इस दुनिया के अंदर जो पत्थर वगैरह हैं, पहाड़ हैं, चट्टाने हैं, उनकी सरजमीन सख्त है, तो क़ुरान वाज़े जवाब देता है कि पत्थर और पहाड़ों के तो अंदर से फिर होता है कि पानी निकल आता है, लेकिन इंसान एक ऐसा जालिम कसूल कल्ब शकी और सख्त दिल है कि उसके वजूद से कभी भी ये नौरानियत और ये नरमी जन्म नहीं लेती। लिहाजा क़ुरान इस हवाले से वाज़े तौर पे अर्ज़ करता है कि अगर पत्थर जो है उससे भी बाज़ औक़ात खुदावंद मुताल निकाल देता है पानी को, और लोग फिर जो है वो उससे इस्तफादा करते हैं, लेकिन अगर शकावत आ जाए तो ये शकावत सारे के सारे रास्ते इंसान के वजूद में बंद कर देती है और उससे फिर कुछ नहीं निकल सकता। इसलिए इंसानी दिल वो ज़्यादा सख्त है। इस दिल को कैसे नरम करें? है कोई हमारे पास ऐसा ज़रिया कि इस दिल को नरम कर सकें? तो गम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो कीमियाए नुस्खाए कीमिया है कि जिसके ज़रिए से सख्त दिल भी वो नरम पड़ जाता है, और फिर हिकमत, बसीरत, नौरानियत इसके सरचश्मे इंसान के कल्ब से जारी हो सकते हैं। ये एक हमारे पास गम के हवाले से, यानी गिरिया के हवाले से, गिरिया के हवाले से इस कदर कसीर हमारे पास अहादीस हैं कि 200 से 300 सफ़े की किताबें बन जाती हैं, इस कदर कसीर अहादीस हैं। लिहाजा सिर्फ इशारा इसकी तरफ करके अगले हम मानवी असर की तरफ मुंतकिल होते हैं। बस कोशिश करें अगर आंसू नहीं बह रहे, शक्ल बनाए, हद अकल शक्ल बनाने की कोशिश करें, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला की ज़ात इनायत करेगी। हाँ, इस तरफ तवज्जो रखें कि कसावत की क्या वजूहात है। दुनिया के साथ कामिलन मशगूल रहना कसावत का बायस है। इंसान का लोगों की हर दफ़ा परवाह करते रहना, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, फलां आया है फलां नहीं आया, कसावत का बायस बन जाता है। इसी तरह खुराकें हैं बहुत सारी, कसावत का बायस बन जाती हैं। शकावत और कसावत में फ़र्क करना चाहिए, क्योंकि कसावत पहले है फिर शकावत इंसान पर अमलन तारी हो जाती है। हाँ ये भी हो सकता है जब शकावत कल्बी तौर पे तारी हो चुकी हो फिर कसावत के आमाल अंजाम देता है। बहरहाल खुराक के अतबार से, आमाल के अतबार से कोशिश करें कि कसावत को ख़त्म करें। ये एक अखलाकी मौजू है कि किसी और वक्त हम इसे डिस्कस करेंगे, लेकिन गम हुसैन की बरकत आपने देखी कि अगर आंसू जारी हो जाए तो इंसानी वजूद से ये कसावत कल्बी दूर होती चली जाती है। और एक वक्त आता है कि आँखों के अंदर आंसू जन्म ले लेते हैं। ये मरहला है कि कल्ब की ज़मीन अब नरम हो चुकी है। अब जब कल्ब की ज़मीन नरम हो गई है तो अमल में जल्दी करें, क्योंकि कसावत के साथ अमल की तरफ आना बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। जैसे नमाजें नहीं पढ़ी जाए, दो रकत नहीं पढ़ी जाती, वैसे भाग दौड़ करता रहेगा, अपने खानवादे या बेगम बच्चों के साथ बाज़ारों में फिरता रहेगा, लेकिन न बैठ के दो रकत इशा के क्या फजर के दो रकत खड़े होकर नहीं पढ़ सकता इंसान। ऐसा इस तरह से कसावत आ जाए, नमाज में दिल नहीं लगेगा, आयात जो हैं वो इस तरह लगेंगे जैसे कोई पत्थर कानों में टकरा रहे हैं, दुआओं से दिल उठ जाएगा इंसान का। लिहाजा ये कसावत की अलामतें हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की राह में आंसू बहाना एक तरफ गुनाहों से आज़ाद करता है इंसान को, दूसरी तरफ से कल्ब में कसावत को ख़त्म करता है, यानी ये इंसान मलाकूती बनना शुरू हो गया है। कोई भी शख्स हो गिरिया कर रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में, वरफा और असातीज़े इरफान बयान करते हैं वो मलाकूती आस्ता आस्ता इंसान बन रहा है। ये ख्याल ना करें कि इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि हम उसके बातनी हालात से वाकिफ़ नहीं है। अल्लाह ताला और अब्द का मामला है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपनी रहमत वासिया करार दिया है और इस रहमत वासिया को हुस्न के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इदारा किया है, चलाया है, और हुस्न से हुसैन अल्लाह ताला ने रखा है। इसलिए ये उरफा बयान फरमाते हैं कि बारह आइमा अलैहिस्सलाम में हुसैन एक ही हैं, सिर्फ एक ही हुसैन रखे हैं, क्योंकि हुस्न जन्म लेगा तो उस वक्त ये रहमत वसी पैमाने पे उस अब्द को तमाम के तमाम इन कसावतों, कसाफतों और नजासत और कबाहतों से आस्ता आस्ता दूर ले जाएगी। लिहाजा हर दौर में ता क़यामत अगर हरारत, अगर कल्ब की रग़बत और शौक़ और मेलान के साथ इंसान ने यजीदियत, तागूतियत, नजासत और इस पलीदगी से दूर होना है तो दामन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे थामना होगा। लिहाजा इस गिरिए के नताइज और उसके असरात उसकी पर खसूसी तवज्जो करें, अपनी हालत पे गौर करें कि जब उसने गिरिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर किया तो दिल के अंदर क्या नरमी का एक एहसास पाया। अब अगर अपने दिल को उसने अगले मरहले में दाखिल कर लिया कल्ब को, तो यहाँ पे अब और आगे सफ़र कर सकेगा। और वो सफ़र क्या है? वो सफ़र यह है कि अमल की तरफ आए, यानी बाज आगाज़ में अमाल अपने लिए करार दे, मसलन ज़ियारत आशूरा, ज़ियारत वारिसा या इसी तरीके से कोई भी एक छोटी ज़ियारत वो अपने लिए बिलखसूस 40 दिनों के लिए वजीफ़ा करार दे दे, लेकिन उसको अंजाम दे बाकायदगी से, तसलसल के साथ अंजाम दे। अगले मरहले में इस सतह के ऊपर कदम रखें कि वो मिसाल के तौर ज़ियारत आशूरा इंतहाई एक मुअस्सर बेहतरीन इंसान के लिए ज़ियारत है, ज़ियारत वारिसा है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मुनसलिक दीगर ज़ियारतें हैं, उससे एक इंसान ताल्लुक़ पैदा करे, क्योंकि खुद ज़ियारत के अंदर बहुत अजीम और वसी पैगाम वो पिन्हा हैं, पोशीदा हैं। तीसरा मरहला, अब चूँकि गिरिया जारी रहेगा इस अमल में रौनक इंसान अपने अंदर महसूस करता चला जाएगा और यहाँ से वो फिर मुल्कियत से मलकूतियत की तरफ आएगा। मुल्क से मुराद ये मादी जहान खाक है, मर्तबा खाकी को कहते हैं मुल्क, और इससे आज़ाद होने को कहते हैं मलाकूतियत, फिर मलाकूतियत के मदारिज हैं। लिहाजा इंसान का कल्ब अगर सख्त हो तो खाक इसकी अलामत है, वो खाकी है फिर अपने अंदर, वो हजर के मरहले के ऊपर, पत्थरों के मरहले पर ज़िंदगी बसर कर रहा है। लेकिन यहाँ से वो अपने आप को बुलंद करे, बुलंद किसके ज़रिए से करेगा? इश्क और मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके गम की जो एक हिद्दत और तलखी, उसके तकलीफ़ के साथ और हुज़्न के साथ एक आंसुओं के बहाने की तरफ लेके जाएगी। यहाँ से वो मलाकूती सफ़र अपना आगाज़ करेगा। लिहाजा इस मलाकूती सफ़र में फिर दामन थामे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, लेकिन अब एक ज़ियारत के ज़रिए, अब आइमा अलैहिस्सलाम की अता करता तालीमात के ज़रिए से वो दामन थामे। इसलिए अपने लिए इन अय्याम में एक अमल के एतबार से किसी एक ज़ियारत का इंतखाब इंसान कर सकता है। नंबर 3, अब उसके बाद फिर आगे, लेकिन गिरिया जारी रखेगा, क्योंकि ये गिरिया है कि जो ज़मीन कल्ब की ज़मीन को नरम कर रहा है, कल्ब ज़मीने कल्ब को हमवार कर रहा है। इसलिए ये जब तक जारी रहेगा उसका दिल इस अमर के हवाले से नरम होता चला जाएगा। तीसरे मरहले के ऊपर वो अपने आप को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बिलखसूस अहदाफ है, बिलखसूस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नहजत है, उससे वाबस्ता करने की तरफ आ जाए, यानी उनके हदफ को अपना हदफ करार दे, उनकी कुर्बानी को अपने लिए बेमिसाल कुर्बानी इंसान करार देना शुरू कर दे, उनके लिए एहतमाम को, उनसे ताल्लुक़ जोड़ने के लिए दीगर अफराद को इमाम की तरफ दावत देने के लिए अपने आप को हाजिर करें, यानी हुसैनी रंग को आश्कार करना शुरू कर दे। एक दफ़ा होता है सिर्फ शिरकत की हद तक है, इसमें भी मुजायका नहीं है, इसमें भी कदगन नहीं है, ठीक है, शिरकत भी बहुत एक असर रखता है, वही पहला मरहला, लेकिन अगला मरहला अब तन्हाइयों को आबाद कर रहा है ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, उससे अगला मरहला कि अब अपने आप को ऐलानिया तौर पर हुसैनी रंग में ढला हुआ एक अजीम सतह और मर्तबे से हमकिनार होने की सही और कोशिश करने वाला हमें दिखाई दे रहा है। लिहाजा अब उसके रंग मुख्तलिफ़ होंगे, उसकी बातें जो हैं वो अपने उस इस्तेताद के मुताबिक हैं कि जिससे वो ताल्लुक़ रखता है। बस ये हैं मानवी असरात इंसान के। अभी इन मानवी असरात में हम ज़ाहिर ही को मद्देनज़र रखते हुए डिस्कस कर रहे हैं। उलमा ने अगरचे और कई पहलू ज़िक्र किए हैं और कई वजीफ़े ज़िक्र किए हैं जो मुमकिन है कि हमारी दस्तरस में ना आएँ, लेकिन ये 3 मरहले या 4 मरहले या बाज़ और भी हम आगे बात को फैला सकते हैं, ये अमूमी इन अय्याम में हमारी दस्तरस में हैं। मिसाल के तौर पे आज़ादारी में उस आज़ादारी के रंग को सबसे ज़्यादा कबूल करें कि जो आइमा अथार अलैहिस्सलाम की जानिब से आई है। मसलन हुज़्न और गम को बरपा करना, मसाइब का एहतमाम, ज़रूरी नहीं है मसाइब का एहतमाम फ़कत मजलिस से हो, आज के दौर में सोशल मीडिया है, मसाइब का एहतमाम किसी एक अच्छे क्लिप से हो सकता है, किसी एक अच्छे मंज़र से हो सकता है। दिल में अगर गम का एहसास पाएँ गिरिए तक पहुँचाने की कोशिश करें, यह बहुत अहम पहलू और नुक्ता है कि जब भी गम का अंदर एक एहसास पाएँ तन्हाइयों में बैठे हुए हों, क्योंकि गम का ये एक एहसास एक गमगीन मंज़र को देख के भी उभर सकता है, एक गमगीन आवाज़ को सुन के भी उभर सकता है। गम का एहसास पाएँ तो उसे कहाँ तक पहुँचाएँ, कोशिश करें कि वो गिरिए की सतह के ऊपर आए ताकि कल्ब की ज़मीन भी हमवार हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक ताल्लुक़ भी अल्लाह की बारगाह में शदीद कायम हो। लिहाजा इस गिरिए के मानवी असरात, इसके ऊपर उलमा ने बहुत कुछ लिखा है, हम सिर्फ इन 2-3 नुकात के ऊपर इक्तफा करते हैं, लेकिन माह मुबारक मुहर्रम में आगाज़ ही में अपने वजूद के अंदर अहद व पैमान बांधें, या जैसे कि असातीज़ अखलाक और इरफान ज़िक्र करते हैं, बरनामा रेजी करें, यानी शेड्यूल बनाएं अपने लिए, बहुत इसके ऊपर ताकीद करते हैं। और ये जो आगाज़ मुहर्रम के जो बुज़ुर्ग असातीज़ ने हौज़े इल्मिया में भी नसीहतें तुल्लाब को फरमाई हैं, उसमें तकरार के साथ ये बात बयान की है कि बरनामा रेजी करें। बरनामा रेजी से क्या मुराद है, जैसे आप अपने 24 घंटों का एक शेड्यूल बनाते हैं, इतने बजे मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस से फिर ये वाला काम करूंगा, शाम को इधर घर आऊंगा, घर वालों के साथ, ये सारा शेड्यूल है। मुहर्रमुल हराम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके लिए हतमन व हतमन बरनामा रेजी करें। एक बरनामा रेजी मजलिस के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में और राइज एक बरनामा रेजी है, जो इससे पीछे हट जाता है यह तो अपने लिए शकावत का एक अहतमाम करता है, क्योंकि इधर तो माशरा भी उसको लेके जा रहा है इन मजालिस की महाफिल तक। लेकिन इन्हीं के अंदर बरनामा रेजी कैसे करें, गिरिए के ज़रिए से अपने दिल को नरम करना बहुत एक अजीम ज़रिया है। ये दर और ये दरवाज़ा और ये राह ये तूले साल खुली है, लेकिन मुहर्रमुल हराम की आमद और इसके अंदर जो एहतमाम है ये ख़ुद माशरे की एहसास में इंसान के लिए इस मरहले को ईजाद कर देता है। लिहाजा ये हमारे पास एक पहलू हो गया बरनामा रेजी के बाब से। दूसरा बरनामा रेजी के बाब से क्या नुकता है, एक अमल बड़ा मुख्तसर क्यों ना हो लेकिन तसलसल के साथ हो। मसलन नमाज फजर के बाद मैं एक ज़ियारत को पढ़ूंगा, या ये कह ले कि मैं मगरिब के बाद या सोने से पहले या दोपहर के किसी भी टाइम अपनी तवज्जो करें इमाम की तरफ और उसका इंतखाब करते हुए तजदीद अहद की कोशिश करें, उसके मतालिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ तवज्जो कामिल करके इमाम के लिए उस ज़ियारत को पढ़ने की कोशिश करें। नंबर तीन कि इंसान जो है अपने आप को हुसैनियत में ढालने का अज़म करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हदफ़ को अपना हदफ़ करार दे, इमाम के गम को अपना गम करार दे, हर चीज़ उसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बन जाए, उनको देखकर हर चीज़ को वो इख्तियार कर रहा हो। ये अगर वो इन चंद अय्याम में प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, तमरीन करना शुरू कर दे, तो इंसान अपने नफ्स के अंदर बहुत गहरे मानवी असरात पाएगा कि जिसकी तासीर एक मुद्दत वो अपने ज़िंदगी और अपने अय्याम हयात में मुलाहिज़ा कर सकता है। अल्लाह सुबहानहु तआला बहक़ मुहम्मद व आल मुहम्मद हमें इन मुहर्रमुल हराम के अय्याम में उस तरीके से अमाल की तौफीक इनायत फरमाए कि जिस तरह से आइम अहले बैत अलैहिम सलाम ने हमें हिदायत फरमाई है। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।